11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन था जिसने संभवतः आधुनिक युग का इतिहास बदल दिया। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स में एक के बाद एक दो विमानों का आकर टकराना और फिर उनका ध्वस्त होना, इस दृश्य को शायद ही कोई भूल सकता है। 9/11 हमलों को 15 साल हो गए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के विश्लेषक और मुंबई में स्थित थिंक टैंक गेटवे हाउस में नेशनल सिक्योरिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म स्टडीज में फेलो समीर पाटिल से पूछा कि 9/11 ने दुनिया को किस तरह बदला।
एक्चुअली इसके कई आयाम हैं। सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि आतंकवाद 2001 के हमले से पहले जो कंट्रीज उसके साथ लड़ती, जैसे कि रूस था, इंडिया था, इसराइल था, तो जो आतंकवाद का मुद्दा था वो सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित था। लेकिन 2001 के हमले के बाद आतंकवाद का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गया, तो ये सबसे बड़ा एक चेंज आया था। और दूसरी उसकी वजह ये भी थी क्योंकि ये अमेरिकन मेनलैंड पे होने वाला सबसे बड़े पैमाने पर होने वाला हमला था, जिसमें काफी लोग हताहत हुए थे और वो कई देशों के विक्टिम्स थे, तो उसकी वजह से भी ये एक मुद्दा उभर के आ गया। दूसरी जो थी कि अलकायदा जो एक आतंकवादी गुट था, उसका उद्भव पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ और जो उसका सरगना था ओसामा बिन लादेन, वो भी एक तरह से इंटरनेशनल टेररिस्ट मूवमेंट का एक तरह से रहनुमा बन गया। तीसरी चीज जो हुई थी वो ये थी कि पहली बार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो जो था, ये सैनिक गठबंधन है यूरोप में, उसने पहली बार अपना कलेक्टिव डिफेंस का जो आर्टिकल था, आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा का, वो लागू किया था, जो सबसे पहले उसके हिस्ट्री में लागू किया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से नेटो बना था कोल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे कभी भी वो आर्टिकल लागू नहीं हुआ था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद वो भी अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के लिए वो आर्टिकल लागू किया गया था। और तीसरी वजह ये, चौथा आयाम ये है कि जो बहुत सारे देश पहले अपने विद इन देयर कंट्रीज जब जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसीज के साथ लड़ रहे थे, उन सभी देशों को एक तरह से 2001 के हमलों के बाद एक वजह और एक तर्क मिल गया कि वो एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने। तो ये कभी कई उसके आयाम थे जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आया था।
वहीं इस विषय पर द हिंदू अखबार के मैनेजिंग एडिटर अमित बरुआ ने हमें बताया।
जी पल्लवी, इसमें मुझे लगता है कि काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन परसेप्शन में हुआ, और खासकर कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में या अमेरिका में ऐसा लगता था कि ये आतंकवाद एक बहुत दूर का मसला है, वो एक तरह से घर आ गया, और उसकी वजह से काफी सोच बदल गई कि किस तरह से इस मामले से निपटना है।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक, अमरीकी मामलों के जानकार और ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में फेलो डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि 9/11 के हमलों के पहले आतंकवाद के मुद्दे को विश्व भर में इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था।
9/11 के पहले जो है टेररिज्म कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। इंडिया यूज्ड टू हाईलाइट इट एवरी ऑन एवरी फ्रंट, इंटरनेशनल फ्रंट एंड स्पेशली इन रिगार्ड्स टू यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस। सो उसके पहले इसको लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। 9/11 It was a watershed moment in the history of how to look, especially in the terms of looking at terrorism as a security issue. और आप देखते हैं कि अब कोई ऐसा country नहीं है जो इसको seriously treat नहीं करता. It's a major security policy for every country, and especially America and American allies and Western democratic countries.
हमने समीर पाटिल से ये भी पूछा कि इन हमलों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा?
जी हाँ, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये था कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि भारत पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा था, अकेले लड़ रहा था। एक तरह से ये हुआ कि मतलब क्योंकि अभी अमेरिका और भारत के बीच में एक तरह से सामरिक सहमति बन गई कि उनको आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए, और इसकी वजह से भारत का जो स्ट्रगल था आतंकवाद के खिलाफ उसको एक प्रोत्साहन मिल गया। दूसरी चीज ये थी कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जब 9/11 के हमले हुए थे उसी समय भारत में भी दो महत्वपूर्ण हमले हुए थे। एक पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था दिसंबर 2001 में, और एक श्रीनगर की विधानसभा में अटैक हुआ था कश्मीर असेंबली पे। तो वो जो हमले हुए थे उसकी वजह से भारत ने सबसे बड़ा जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया था पीसफुल टाइम्स में वो किया था, और उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी टकराव हुआ था और उनको एक तरह से लड़ाई पे लाके खड़ा कर दिया था। तो ये एक उसका प्रभाव पड़ा था। और तीसरा प्रभाव ये था कि एक तरह से सोवियत यूनियन के और अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप से एक तरह से पीछे हट चुका था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद वो फिर से एक बार भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया, जिसकी वजह से अमेरिकी विदेश नीति में भारतीय उपमहाद्वीप का जो महत्व है वो काफी बढ़ गया।
डॉक्टर अशोक शर्मा से हमने इस विषय के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति के बारे में भी पूछा।
तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ ऑलमोस्ट हर फ्रंट पर साथ रहता है। आज इस्लामिक स्टेट वो जो वहां पर जो वॉर हो रहा है सीरिया में, वहां पे भी जो पूरा वो थिएटर में भी आपको ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलेगा एंड बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ओके, दे अलायंस पार्टनर, वेरी ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर। ऑस्ट्रेलिया टारगेटेड है, एकदम टारगेट रडार में है, और यहाँ पर भी कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो वो एक खतरा बना रहता है और ऑस्ट्रेलिया इसको काफी सीरियसली लेती है। इनफैक्ट एक बाईपार्टीशन अप्रोच है कि ये टेररिज्म पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में एक बाईपार्टीशन कंसेंसस है, चाहे वो लेबर हो चाहे वो लिबरल हो, दोनों एक कंसेंसस बना हुआ है कि इस पे वो फर्म स्टैंड लेंगे। इनका इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, पुलिसिंग काफी स्ट्रांग है, एंड आप देखें तो सिर्फ एक या दो इंसिडेंट के अलावा आपको यहाँ पर अभी तक इतना टेररिस्ट अटैक नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा फोरफ्रंट पर है काउंटर टेररिज्म में अमेरिका के साथ।
समीर पाटिल से हमने ये भी प्रश्न किया कि 9/11 के 15 साल बाद आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या परिस्थितियां हैं।
अगर आज की दुनिया की तरफ देखें तो जैसे लगता है कि 9/11 के हमले किसी और दुनिया में हुए थे, लेकिन अभी भी सिचुएशन ये है कि मतलब अभी अलकायदा पीछे पड़ गया है और उसकी उसकी जो पैदाइश है दाएश है इस्लामिक स्टेट, वो अभी एक तरह से सेंटर स्टेज ले चुका है। दूसरी चीज ये हुई है कि जो आतंकवादी है वो अभी टेक्नोलॉजी का यूज करने में काफी विकसित हुए है, और तीसरी चीज विद इन टेररिज्म ये हुआ है कि आतंकवाद का एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल आ गया है, जिसमें कि मतलब लोन वुल्फ जो फिर संकल्पना है वो आगे आ गई है, जो एक तरह से अगर आप देखेंगे अलकायदा का मतलब जो इंटेंशन था टेररिज्म को लाने में, तो वो एक तरह से उसका लॉजिकल एवोल्यूशन है। अगर हम लोग इसका मुकाबला करने की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि इवन तो हमारी कोऑपरेशन और कैपेबिलिटीज जो है बहुत तरह से मतलब मजबूत हो चुकी है। अभी काफी देशों में कोऑपरेशन होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, काफी देश जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और बहुत सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ करती है। लेकिन अभी भी हम लोग तीन चार चीजें नहीं कर पाए हैं। वो ये एक है कि जो देश अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में भेद करते हैं, उन देशों को हम लोग अभी तक अलग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ये है कि जो ऐसे देश जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को पनपने देते हैं उनको हम लोग अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे, और तीसरी चीज यह है कि जो चरमपंथी विचारधारा है उसका जो प्रचार हो रहा है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, उसको हम लोग काफी मायने में रोक नहीं पा रहे हैं। और चौथी चीज ये है कि अभी भी अगर आप देखोगे इराक और अफगानिस्तान में, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी अस्थिर है, तो इस सभी चीजों की वजह से अभी भी आज का जो आतंकवाद का मुकाबला करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और काफी मतलब बहुत सारे देशों ने मतलब कोऑपरेशन किया है इवॉल्व, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ उस कोऑपरेशन में कम पड़ रहे हैं।